जग तृष्णा है ये जग सारा, कोई न तेरा कोई न मेरा। जग तृष्णा है ये जग सारा, कोई न तेरा कोई न मेरा।
मैं मृगा मरीचि का प्यासे को पानी का आभास दिलाती, मैं पानी का मोल बताती, मैं पानी को अनमोल बताती। मैं मृगा मरीचि का रेगिस्तान में उठती गर्म हवा की लहर हूं मैं, मानो शांत पानी में किसी ने कंकड़ मार दिया हो। मैं पानी की एक एक बूंद को तरसते मरुस्थल की पहचान हूं। कभी मेरी छाती पर मारता था हिलोरे समुंदर का पानी, उसी पानी की आस हूं मैं। मैं मीठे पानी के स्रोत का रास्ता जानती हूं। मैं हारे थके प्यासे काफिले में जाने की आस बांधती हूँ। अनमोल पानी का झरना नहीं हूँ मैं, कुएं और सरोवर का मीठा पानी भी नहीं हूँ मैं। मैंने तो पानी को कभी छुआ तक नहीं, मुझे तो पानी कभी दिखा ही नहीं। मैं तो बस प्यासे की प्यास हूँ, मैं तो बस पानी का एहसास हूँ। मुरलियों में यह शब्द कई बार आया है, रुण्य का पानी अर्थात मृग मरीचिका अर्थात मिराज जिसको कहते हैं। रेगिस्तान में जब यात्री यात्रा करते हैं ऊंटों पर, दिखाई पड़ता है कि दूर कहीं पर झाड़ है और उन झाड़ों की परछाई, पेड़ों की परछाई रेगिस्तान के पानी में है और वो पानी का स्रोत वहां है। भागते हुए जाते हैं, पहुंचते हैं और पाते हैं कि पानी तो है ही नहीं। वो क्या था? दृष्टि भ्रम। वो क्या था? एक प्रकाश भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन जिसको कहते हैं मिराज। कई मुरलियों में आया है वो जो अमेरिका राज्य है, उनका जो राज्य है वो है रुण्य का पानी अर्थात वो है ब्रह्म। वो जो साहूकार लोग हैं समझते हैं हमारे पास तो महल माड़िया है, परंतु वो सब क्या है? रुण्य का पानी। वो सब क्या है? मृग मरीचिका, एक ब्रह्म। और क्यों होता है ये? रेगिस्तान की तपती धूप में, रेगिस्तान की सब तपती रेत पर ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां जैसे ही पहुंचते हैं यात्री कुछ भी नहीं है, फिर थोड़ा दूर और देखते हैं वहां पर पानी है, दौड़ कर जाते हैं वहां, देखते हैं वहां पर भी कुछ नहीं है, प्यासे ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीजें उसमें, साइंटिस्ट साइंस की चीजें है, उसकी गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, परंतु जैसे ये रेगिस्तान है और यहाँ कोई झाड़ है तो इसकी परछाई यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ जैसे कोई सरोवर दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है। उसके कई कारण बताए हैं। ये तपती रेत है, तपती रेत जहाँ पर है वहाँ पर ऊपर का जो थोड़ा हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा और ठंडा और ऊपर गर्म। तो जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ परावर्तित होती है, रिफ्लेक्शन करते करते यहाँ आती है, एक भ्रम क्रिएट होता है और हम लोग यहाँ देखते हैं और यहाँ का यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से, जैसे कोई भी कांच है, सूर्य की किरण जैसे उसमें से जाती है उसका रास्ता वो बदलती है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन की वजह से बाद में जो रास्ता होता है बेंड होती है रेज, कुछ और दिखता है। यहां पर भी ऐसे ही होता है, डेंसिटी चेंज होती है यहां पर एयर की और उसकी वजह से टोटल रिफ्लेक्शन, और उसके वहां से यहां पानी भ्रम जैसा दिखता है। इसको कहते हैं इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम। तो कई मुरलियों में यह शब्द आया है, रुण्य का पानी, मृग मरीचिका, और वो भ्रमित करता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, ये मृग मरीचिका क्या है इस ब्राह्मण जीवन में। ये एक भ्रम सा है, क्या हम भी भ्रम में जी रहे हैं? क्या हम भी भ्रम में जी रहे हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो नहीं कहने का साहस और हिम्मत बहुत कम में है कि हम भ्रम में नहीं जी रहे। हम जो जी रहे वही जीना है, हम जो जी रहे वही सत्य है, परंतु हम आत्माएं भी लंबे समय से माया के भ्रम में रही है और माया ने भ्रमित किया है, ठगा है। इसके लिए माया महाठगनी हम जानी, कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए डोले, बोले मधुर वाणी। निर्गुण को फांस रखा है माया ने वो जो परमात्मा है वो उसके अंदर है, और वो बोलती कैसी है, बोले मधुर वाणी, केशव के कमला हुई बैठी, केशव के घर में कमला होकर बैठी है, शिव के भवन भवानी, शिव के घर में भवानी होकर बैठी है, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ हूं मैं पानी, तीरथ में पानी है, जोगी के जोगन हुई बैठी, जो जोगी है उसके घर में जोगन जो है वो उसके लिए माया है, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुई बैठी, किसी के घर में हीरा होकर बैठी है, काहू के कौड़ी खानी, और गरीबों के लिए माया उसकी कौड़ी ही माया है, भगत के भक्ति होई बैठी, भगत के लिए भक्ति ही माया बन जाती है, ब्रह्मा के ब्रह्मा पानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अथक कहानी, माया महाठगनी हम जानी, बहुत ठगा है, इसके लिए समझ में नहीं आता है क्या है, भ्रम सा है सारा संसार ये जीवन, इसके लिए यहां जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, जो हम परसीव कर रहे देख रहे हैं सत्य उससे कहीं ना कहीं परे है, इसके लिए केवल वही हमें इस भ्रम से निकाल सकता है जो स्वयं इस भ्रम से परे है, क्योंकि सारी मनुष्य आत्माएं कहीं ना कहीं भ्रम में जी रही है, और ढेर सारे भ्रम है, ढेर सारी मृगमरीचिकाएं हैं जिसके बंधन में हम फंसे हैं, जैसे एक व्यक्ति जो दारू पीता है अपने बेटे को ले जाता है शराब खाने में और उसको नसीहत देता है, सिखाता है कि दारू कब तक पी जाए, और पीते पीते वो कहता है बेटे मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं कि जब भी तुम दारू पियो कब बंद करना, जब तुम्हें डबल डबल दिखने लगे, जैसे अभी वो जो सामने चार लोग बैठे हैं, जब वो तुम्हें आठ दिखे तब समझ लेना ज्यादा हो गई, बंद करो। बेटा कहता है पर पिताजी वहां तो दो ही लोग हैं। मतलब अभी पी चुका है, जो सिखा रहा है वो भी भ्रम में है, वो भी भटका हुआ है, वो क्या सिखाएगा दूसरों को। तो ये जो भ्रम है ये बड़ा सूक्ष्म है, और शायद हम सभी किसी ना किसी भ्रम में जी रहे, कोई ना कोई भ्रम हमें घेरे हुए है। सबसे प्रसिद्ध बताते हैं जनक की बात, राजा जनक इतना बड़ा सम्राट स्वप्न देखता है कि किसी दूसरे राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया, उसका सारा परिवार नष्ट कर दिया और उसे भी देश निकाला दे दिया, वो भाग रहा है शत्रु के सैनिक पीछे, कैसे वैसे जान बचाते हुए वो एक स्थान पर पहुंचा किसी दूसरे राज्य में, भिखारी है, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ नष्ट हो गया, इतना बड़ा सम्राट सब खत्म, भूख लगी है, देखता है कहां पर भोजन हो रहा है, वितरण हो रहा है, भाग कर जाता है वहां पर, कुछ भी नहीं बचता है, थोड़ा सा अंतिम बचता है, वो एक पात्र में उस भोजन को लेता है, और जैसे ही खाने जाता है एक चील आती है वो भी ले चली जाती है, और एकदम उसकी आंख खुलती है, वो कहता है अरे ये क्या है, और आंख खुलती है तो सुबह हुई है, वहां से जय घोष हो रहा है, सम्राट जनक की जय, वो कहता है ये सत्य है या ये सत्य है, सत्य क्या है, मैं राजा हूं मैं सम्राट हूं ये सत्य है, या मैं भिखारी हूं ये सत्य है। सभा में जाता है और अपने मंत्रीगण मनीषी पंडित विद्वान आचार्य ज्योतिषी से पूछता है सत्य क्या है, मैं राजा हूं ये सत्य है, या मैं भिखारी हूं ये सत्य है, यदि मैं राजा हूं तो वो जो देखा वो स्वप्न था, पर यह भी तो हो सकता है मैं भिखारी हूं और राजा हूं ये स्वप्न देख रहा हूं, ये जो सभा है ये स्वप्न है और वो सत्य है, सत्य क्या है, कोई भी उत्तर नहीं दे सकता है। और उस सभा में तब अष्टवक्र आता है और वो राजा को उत्तर देता है, क्या उत्तर देता होगा, नहीं ना, वो तो फिर क्या, वो कहता है ना वो सत्य था न ये सत्य है। न वो सत्य था कि तुम भिखारी हो थे, न ये सत्य है कि तुम राजा हो। सत्य केवल एक ही है कि तुम एक आत्मा हो, बस यही सत्य है। और वो जो देखा वो भी भ्रम, और इधर जो हो रहा है अभी ये भी स्वप्न है, ये भी भ्रम है। इसलिए ना उधर की वजह से दुखी होना, ना इधर की वजह से दुखी होना, ये दोनों ही मिथ्या है। तो मृग मरीचिका, क्या इस ब्राह्मण जीवन में भी मृग मरीचिका आए हैं? हाँ है। वो कौन कौन से मृग मरीचिका है उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला इंद्रिय सुख, सबसे पहला इंद्रिय सुख। इंद्रियों को भौतिक सुखों में डुबाकर जो सुख की प्राप्ति होती है वो मृग मरीचिका है। ये सोचना कि ये भोगू तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये मृग मरीचिका है। दिख रहा है दूर पानी है, पर नजदीक जाओ तो वहां पानी है ही नहीं। बैठ के व्यक्ति सोचता है ये लोग देखो कितने सुखी है। जैसे एक अमेरिकन ऑथर ने अपनी कहानी लिखी है जीवन की, उसने लिखा है मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, कोई मेरी नहीं सुनता था, सब कहते थे तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। सोचता था कब जल्दी बड़ा हो जाऊं, स्कूल में जाऊं, क्योंकि यहां तो कोई सुनता ही नहीं है। कुछ भी मांगो तो हजार कारण देते हैं। वो कहता है मैं स्कूल में जाऊंगा, मेरे अपने दोस्त होंगे, जो मर्जी है वो करूंगा। स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है तो पढ़ाई बोझ, माँ बाप की डांट, सोचता है ये भी कोई जीवन है। मुझे कॉलेज में जल्दी जाना है, मुझे जल्दी बड़ा होना है, ताकि कॉलेज में जो मर्जी चाहे करूंगा, दोस्तों के साथ जहां घूमना है वहां फिरूंगा। तो कॉलेज पहुंचता है, कॉलेज जब पहुंचता है तब सोचता है ये भी कोई जीवन है, पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। कहता मुझे जल्दी से जल्दी कोई जॉब करनी है, फिर जॉब करता है और जॉब करने लगता है, और फिर सोचता है इतनी छोटी जॉब से क्या होगा, इतने कम पैसे से मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है और बहुत अमीर बन जाता है। फिर सोचता है मेरा वो बचपन कहां चला गया, अब तो नींद ही नहीं है, अब भी दुखी है। जैसे दो पायलट उड़ रहे फ्लाइट में और एक गांव के ऊपर से गुजरते, एक पायलट को एकदम याद आता है ये तो मेरा गांव है, बचपन में वो तालाब वहां मैं बैठा करता था, वहां पर बैठ के खेलते थे हम लोग, कितने अच्छे दिन थे वो, कितने प्यारे दिन थे वो, काश मैं फिर से वैसे ही बचपन में चला जाऊं, फिर से बच्चा बन जाऊं। अभी इतनी झंझटे, पत्नी बच्चे सब झंझट ही झंझट है, पर उसे फिर याद आता है कि जब मैं छोटा बच्चा था और उसी तालाब में खेलता था तब क्या सोचता था, तब भी दुखी था, तब ये दुख था कि वो जो आकाश में प्लेन उड़ रहा है उसमें मैं कब बैठूंगा, मैं कब पायलट बनूंगा। जब छोटा था तो वो सोचता था, बड़ा हो गया तो सोचता है छोटा कब बनूंगा। यही तो भ्रम है। सबसे बड़ी मृग मरीचिका है इंद्रिय सुख। ऐसा हम सोचते हैं कि ये मिल जाए सुख के चीजें तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, पर सुख का स्रोत बाहर नहीं है। जैसे वो कस्तूरी ढूंढता हुआ मृग कहां भटकता है, यहां भटकता है, वहां भटकता है, पर कभी नहीं मिलता उसको। क्यों? क्योंकि स्रोत अंदर है। जैसे वो कुत्ता हड्डी को पकड़ता है, लड़ता है हड्डी के लिए, दूसरे कुत्तों से हड्डी लेके भागता है और फिर हड्डी को चबाता है, बहुत खुशी होती है उसको। पर खुशी कहां से हो रही है? क्योंकि उसका खून जो आ रहा है वो खुद का ही खून खा रहा है। हड्डी चबाते चबाते मसूड़ों से खून निकल रहा है और खुद ही के खून को टेस्ट कर रहा है, कहता है आहा बहुत बढ़िया है, पर उसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह संसार के जितने इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है, आंखों से, मुख से, कान से, सारे वो सभी एक रीति से भ्रम है, उनमें सुख नहीं है। और इसी में तो आत्मा फंसी हुई है, इसी देह भान में, इसी देह अहंकार में, इसी देह भोग में, देह की वासना में, देह के इन अल्पकालीन क्षणभंगुर सुखों में आत्मा फंसी है और लगता है कि यही सब कुछ है, जबकि यहां पर सुख है ही नहीं, सुख तो कहीं और है, सुख का स्रोत ही ये नहीं है। वो देह में नहीं है सुख, आत्मा में है। तो सबसे पहला वैराग इन इंद्रिय सुखों से लाना है, और इंद्रिय सुखों का एक स्वभाव है, जितना उनको भोगो उतना एडिक्शन क्रिएट होता है, लत, और जब उनको छोड़ो तो क्या होता है, तलब, क्रेविंग। छोड़ते ही याद आती है उनकी, बहुत ज्यादा याद आती है, बेचैनी उत्पन्न होती है, वही चाहिए, नहीं मिला तो व्यक्ति बहुत हलचल में आ जाता है। यही तो मृग मरीचिका है। तो सबसे पहला है इंद्रिय सुख, दूसरा है संबंध, दूसरा मृग मरीचिका है संबंध। कोई दोस्त मिल जाए, दोस्त मिल गया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा स्वभाव है, पर एक दिन कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे दिल टूट जाता है, फिर पता चलता है कि ये भी वही है, ये भी वैसा ही है, और फिर दुखी होता है। संसारिक जितने संबंध है कभी भी दुसुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो सभी बंधन है। अगर ये इन्हीं संबंधों में सुख होता, पत्नी में सुख होता, और पति में सुख होता, और भी बच्चों में सुख होता, और मित्र संबंधियों में सुख होता, तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। सभी दुखदाई है, सभी स्वार्थ पर आधारित है, और जिनको मैं मेरा कहता हूं वो मेरे कभी थे ही नहीं थे, क्या केवल एक दृष्टि भ्रम था, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं। और जो ज्ञान में आ जाते हैं उनके लिए भी वो भ्रम ही है, चाहे ज्ञान में हो या ना हो, ज्ञान में आने के बाद एक अलग प्रकार का भ्रम निर्माण होता है। अगर सारा ही परिवार ज्ञान में तो भी आपस में मोह बंधन रहता है, वो भी बंधन है, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक। अलौकिक वाले बंधन तो और कड़े हैं, लौकिक वालों को तोड़कर यहां आ गए, परंतु अलौकिक बंधनों में फंस गए, किसी को दोस्ती बना लिया, अब वही चाहिए घूमने के लिए, अब वही चाहिए योग करने के लिए, वही चाहिए हर चीज के लिए, साथ में भोजन खाने के लिए, जाने के लिए, कोई प्रोग्राम है तो वही व्यक्ति चाहिए साथ जाने के लिए, क्यों अकेले नहीं जा सकते? ये मार्ग अकेले का है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ यात्रा है, एकांगी पगदंडी है, यहां किसी को भी साथी बनाया तो बंधन है, अलौकिक जीवन में भी। व्यक्ति जा चुका है, कोई इंचार्ज, कोई साथी जिसने हमारे साथ बहुत लंबा समय तक सेवाएं की है, दिन रात यादें, ऐसी हमने बहुत सारी आत्माएं देखी है, अभी तक उसको भूल नहीं पाई है जिस शरीर छोड़ के चली जा चुकी है। कुछ भी होता है तो हां, बहन जी को वो बहुत पसंद था, उसको वो अच्छा लगता था, उसको वो अच्छा लगता था, अभी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसके लिए? बड़ी बहन जी के लिए, कि जो जा चुकी है। ये भी तो बंधन है अलौकिक, पर ये भी बंधन है। यहां कोई भी किसी का भी साथी नहीं है, यह सबसे पहली बात समझ लेनी है। बाबा को कहा, बाबा हमारी मम्मा चली गई, बाबा ने क्या कहा? तुम भी जाओगे, अब तुम्हारी बारी है। दूसरों के लिए कहते हम हलवा खाओ, और खुद की गई तो फिर दर्द है। दूसरों के लिए ड्रामा, जो हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप लगाओ, और खुद का कुछ हुआ तो हाय रे मैं दुखी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संबंध भ्रम है, मृग मरीचिका है। हाँ एक संबंध है आत्मिक संबंध। हाँ एक संबंध है कि हमें या हमारे आत्मिक भाई बहने हैं, भगवान आया हुआ है और हमको साथ लेके जाने के लिए। हमारा इनसे संबंध अलौकिक है, ज्ञान और योग का संबंध है, सेवा का संबंध है, डिटैच्ड बस। इसके अतिरिक्त तो और कोई संबंध नहीं, इसके अतिरिक्त तो कोई फैमिलियरिटी नहीं, इसके अतिरिक्त तो कोई अपनापन, कल की मुरली अपनापन, अपना रहा मतलब योग खत्म, कोई भी अपना नहीं है एक बाप के अतिरिक्त। हर संबंध यहां भ्रम है, हर संबंध एक धोखा है, कोई भी संबंध हो। फिर कोई अपने टीचर में ही फंस गया, वो भी भ्रम है। कोई टीचर स्टूडेंट में ही फंस जाए, ये भी भ्रम है। कोई दोस्त दोस्त में फंस गया, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी में फंसा है। शिव के घर भवानी, केशव के घर कमला, माया महाठगनी हम जानी, हर एक कहीं ना कहीं फंस चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो मानसिक बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है, मेंटल बॉन्डेजेस, इमोशनल स्लेवरी, भावनात्मक गुलामी, दास्ता, किसी व्यक्ति में ही फंसे हुए हैं। जिसके पहले भी सुनाया था, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक युवा व्यक्ति एकदम वैराग, कैसे आया? क्योंकि माँ बाप बहुत ज्यादा उसको पूछते रहते थे, आसक्त थे, ओवर केयरिंग पेरेंट्स, दिन रात पूछते रहते थे कहां गए थे, क्या किया, क्या किया, कैसे किया, क्या किया। तंग आ गया, इरिटेट हो गया अपने पेरेंट्स से और कहा मैं अब वैराग ले लूंगा, अब संन्यास लेता हूं मैं, और वो चला गया। और पता चला महात्मा बुद्ध आए हुए हैं और जाके कहा कि मुझे संसार से वैराग है, संन्यास, संन्यासी बन गया। पिता और माँ दोनों को बेचैनी हुई, बेटा गया कहां, दिन रात उसकी पुचकार करने वाले, पूछताछ। पिता निकलता है ढूंढने, ढूंढते 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 पता चलता है बच्चे ने संन्यास लिया है। वो कहते हैं मुझे भी संन्यास लेना है, और वो भी संन्यास ले लेता है। माँ कई दिन घर रहती है, पिता नहीं है, पति नहीं आया, बच्चा भी नहीं आया। वो निकल पड़ती है ढूंढने और वो पता चलता है कि ये दोनों वहां है। वो कहती है मुझे भी संन्यास लेना है, वो भी संन्यास लेती है। तीनों ही संन्यासी अभी सुबह सुबह साथ साथ प्रवचन सुनते हैं, फिर साथ साथ भिक्षा मांगने जाते हैं, फिर साथ साथ आते हैं, साथ साथ ही भोजन करते हैं। जो उधर था इधर निर्माण कर दिया, पहले घर में जो मोह था अब ये अलौकिक मोह में परिवर्तित हो गया, ये लौकिक वो अलौकिक, अब सब कुछ साथ साथ करते हैं, साथ में ही बैठते हैं, साथ में ही सोते हैं। ये प्यार नहीं मोह है, मृग मरीचिका है। संडे की मुरली, ये सहज योगी बनने की विधि, निरंतर योगी बनने की विधि क्या है? सहज हो जाए याद। जब तक कोई चीज सहज नहीं वो लंबा समय नहीं चलेगी, खींचा तान करके कब तक चलाओगे, एक दिन टूट जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, मृग मरीचिका सकाम सेवा या पुण्य कर्म। पुण्य कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म बहुत अच्छी बात है, परंतु सकाम भाव है उसमें, स्वार्थ का भाव है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये सेवा करूंगा तो फोटो भी आ जाएगा। ज्ञानामृत में, ज्ञानामृत में सबसे पहले अगर पता चला किसी ने यह बता दिया कि तुम्हारी फोटो छपी है, ठीक है, तो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, ज्ञानामृत तो ढूंढ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी फोटो है, मेरी कहां है, बाकियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है, अगर ग्रुप फोटो है, अगर दिखाया जाए ये ग्रुप फोटो है इस ग्रुप की, सबसे पहले कहां ढूंढेंगे हम, मैं कहां हूं, हमारी टिकेगी नहीं। सेल्फ लव, आत्म प्यार, नार्सिसिज्म, मैं अपने आप को ही जितना प्यार करता हूं उतना किसी को ही नहीं करता, तो ये जो भी सकाम सेवा है एक बंधन है। इसके लिए सेवाएं निस्वार्थ हो जाए, सेवाओं को निष्काम कर दो, सेवा कर ली फुल स्टॉप, कोई चर्चा नहीं उसकी, कोई वर्णन नहीं उसका। वर्णन कहने को भी कहा तो कुमारों से मुलाकात निमित्त हूं, और डिटैच हो जाओ। जितना उसका वर्णन, जितना उसका विस्तार, उतने ही बंधन, और ये बहुत कड़ा बंधन है। ये भी एक भ्रम है कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सेवा ही भ्रम हो जाता है। सेवा इतनी, विस्तार इतना, वर्णन इतना, ये एक क्या है, मृग मरीचिका। जो दिख रहा है पानी है, जाने के बाद पता चलता है कुछ नहीं है। मुरलियों में आया है, सेवा की वर्णन किया आदि कमाई चट, और जिसमें ये वर्णन किया कि ये मैंने की है, मेरे सिवा ये नहीं हो सकती थी। ये बड़ा सूक्ष्म पाठ है जो जीवन भर सीखते रहना है कि कैसे सेवाओं को निष्काम करते चलो। यहां से भट्टी की घर गए, सबको क्या बताएंगे जो नहीं आए थे, हम लोग क्या करके आए। ये बोलना नहीं चाहिए पड़े, दिखना चाहिए। लोग पूछे कहां जाके आए, कुछ बदले बदले से दिख रहे हो, बोलना पड़ रहा है, अर्थात अहंकार अंदर है। फिर हम उसको ये बता रहे हैं कि हम जाके आए, तुम नहीं जाए गए, ये भी आ जाता है उसमें। सेवा समाचारों में हमेशा बताया है कि वो सेवा का समाचार हो, मैं का नहीं, ये भी भ्रम है। उसके बाद में दुनियावी एंटरटेनमेंट, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, लोग कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं, सोचते हैं ये देखो तो थोड़ी देर हंसी आएगी, अच्छा लगेगा, पर ये उसी तरह दारू की तरह है। उसी कि व्यक्ति बहुत दुखी है, शराब खाने में जाता है, बहुत पीता है, दो तीन घंटे के लिए भूल जाता है अपना दुख, पर जब वापस लौट के आता है दुख तो वही है। शराब दुख को मिटाता नहीं है, भुलाता है। उसी तरह संसार के मनोरंजन दुख को भुलाते नहीं है, मिटाते नहीं है, भुलाते हैं कुछ समय के लिए बस, पर जब वापस व्यक्ति लौट के आता है तो पता चलता है टाइम वेस्ट भी हो गया और दुख तो और भी बढ़ गया, क्योंकि एक नया दुख अभी इसमें आ गया कि हमने श्रीमत का उल्लंघन किया, तोड़ी। मूवी देख रहे हैं तीन तीन घंटा रात में बैठ के, ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, उसमें सब कुछ दिखता है, सोचते हैं इसमें कुछ प्रेरणादायक चीजें हैं। मुरली जो आई है उसमें थोड़ी कम प्रेरणादायक चीजें हैं उसमें ढूंढते भी नहीं मिलती है, पर ये मूवी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। हाँ, सामाजिक है, इसमें बहुत चर्चा चालू है आजकल ब्राह्मण सर्कल में, यह तो देखनी चाहिए, इससे पुरुषार्थ बढ़ जाएगा कितना अच्छा मृग मरीचिका है, इससे वैराग आता है। ये मूवी देखने से एक ने भाई ने बताया बहुत अच्छा है, बहुत वैराग की बात है। कोई कह रहा था हम लोग ने बहुत सारे टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें क्या होता है पता है, कुछ कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो भाषण में यूज कर सकते हैं, फिर कुछ कुछ ऐसे इंस्पायरिंग लाइन्स होती है जो कि बहुत बहुत काम की रहती है। और मुरली वो तो डेली का है, बाप आए हैं, घर जाना है, वही वही चीजें है उसमें। कई तो एकदम क्लियर कट बोल दिया, ये बहुत मुरली बोरिंग है, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं है, सीधा बोलते हैं। संसार के एंटरटेनमेंट मृग मरीचिका है, लगता है कि उसमें सुख है पर है नहीं। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट तो आत्मिक स्थिति है, परमात्म प्रेम है, रूहानी ड्रिल है, परम धाम में आत्मा लंबा समय टिक जाए, उसके बाद में नीचे आने की इच्छा ही ना हो। अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, शरीर भान से परे की जो अवस्था है वो इस संसार का सबसे बड़ा मनोरंजन है। और संसार में मनोरंजन के ढेर साधन है, घूमना फिरना, देखना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, थोड़े देर के लिए ठीक है, अल्पकाल है केवल। इसमें दोष है बड़े। ऐसा कहा जाता है इंद्रिय सुख जो है, एक तो वो भ्रामक है, भ्रम है उसमें, दूसरा वो धोखादायी है, डिसेप्टिव है, तीसरा अल्पकालीन है, शॉर्ट लास्टिंग, ज्यादा समय नहीं टिकता है। और जब इनसे बाहर निकलते हैं तो एडिशनल पश्चाताप लेकर निकलते हैं। पहले जो दुख था इसमें क्यों गए, दुख को भुलाने के लिए, पर जब निकले तो चौथा एडिशन हो जाता है पश्चाताप कि टाइम वेस्ट किया, ये तो श्रीमती नहीं थी, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, उसके बाद में भोजन, इसको अलग कैटेगरी में रख रहे। एक तो बताया इंद्र सुख, इंद्रिय सुख में बाकी सब छोड़ के, भोजन छोड़ के बाकी सब, अब भोजन अलग से। एक ही प्रश्न है, कौन सा? जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? कई ब्राह्मणों के संसार का केंद्र बिंदु भोजन है, भोजन ही सब कुछ है। सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, ब्रह्मा भोजन में कौन सी नई चीज है, इसमें क्या चीज है, दिन रात भोजन का ही चिंतन है। वैरायटी, टेस्ट, क्या क्या नया, बस इसी का चिंतन है। ये भी कहीं ना कहीं उस मनोरंजन की तरह या उस म्यूजिक की तरह या उस काम विकार की तरह ही है, थोड़े देर सुख देता है और एडिक्शन है उसमें भी। ऐसा नहीं कि आज खा लिया मतलब पूरा हो गया हमेशा के लिए, अभी आज अंतिम बार खा रहा हूं उसके बाद कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आज जितना मर्जी चाहे खा लो, बस बार बार थोड़ी मिलता है ये। इसके लिए देवता तरसते हैं, बाबा ने खुद कितनी महिमा की है। बहुत सारे तर्क है हमारे पास, तर्क की तो लिस्ट बहुत है, परंतु उसमें आत्मा फंसती है। वो एक बार खाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है क्या? आज तक द्वापर से किसी का पेट भरा है क्या? पहला प्रश्न ये है, कभी नहीं। उससे क्रेविंग और बढ़ती है, तलब, और इस शरीर को और इस मन को जो खिलाओ उसको उसकी आदत पड़ेगी। उसको दिन रात टेस्टी खिलाओ उसकी आदत पड़ेगी, उसको दिन रात जो आप चाहते हो खिलाओ उसकी आदत पड़ेगी। आदत पर है सब कुछ। और जितना दमन होगा, दमन नहीं करना है यहां पर, किसी और ने किया तो मैं भी करूं, बिल्कुल नहीं। डाइट रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति, वो नहीं होना चाहिए, इवोल्यूशन। धीरे धीरे समझना है उसको, मेरे शरीर को कितनी चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय ब्राह्मणों के भोजन ही बहुत बड़ा कारण है सब बीमारियों का। जितना उसमें तेल है, जितना उसमें नमक है, जितना उसमें मसाले है, चटपटा, तीखा, वो सब क्या है? भोजन। तो ये भी एक मृगमरीचिका जैसा है कि लगता है कि इससे बहुत सुख मिल रहा है, पर दूसरे दिन डायरिया और दूसरे दिन अमृत वेला मिस। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो खाकर, खाते समय तो बहुत अच्छा लगा, सारा ही खा लू जितना बना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। भोजन ये भी एक मृग मरीचिका ना हो, इसके लिए दो चीजों की सेटिंग होनी चाहिए ब्राह्मण जीवन में, भोजन और नींद। इसी की नहीं हो पाती सारा जीवन निकल जाता है, फिर भी ये नहीं समझ पाता है व्यक्ति, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, बना तो है पर खाना है कि नहीं खाना है और कितना खाना है, इस पर ही कंट्रोल नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी कहां से बने? तो ये एक सुख का साधन ना हो जाए भोजन, मेन आधार ना हो जाए ब्राह्मण परिवार जीवन का। जैसे किसी एक बहन ने यहां पर कहा था, हम सेवा क्यों करते हैं? खुशी के लिए सेवा करते हैं या खुशी है इसलिए सेवा करते हैं? खुशी है इसलिए सेवा करते हैं, सेवा से खुशी हो इसलिए नहीं, क्योंकि वो सेवा अगर इसलिए करे कि इससे खुशी हो तो हो सकता है उससे दुख भी हो सकता है। फिर इसके लिए हमारी खुशी इतनी ज्यादा है, उस खुशी के वजह से हम सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में पैसा, धन, वेल्थ। वेल्थ बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, परंतु वो ही सुख का कारण ना बन जाए। अगर उसको बनाया तो एक दिन वही दुख देगा। फिर हम ये बात संसार के लोगों के लिए नहीं कह रहे, हम यहां की आत्माओं के लिए कह रहे हैं कि जो ये समझती है इस सेवा के लिए पैसा चाहिए, उस सेवा के लिए पैसा चाहिए, अपने आप आएगा जो भी पैसा चाहिए। उसके पीछे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है किसी के सामने, भगवान को पता है ये उसका परिवार है, उसका यज्ञ है, वो चलाएगा, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप किसी की भी बुद्धि को टच कर सकता है, वो जानी जाननहार है। तो धन, और कई लोग धन के पीछे पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि बाबा की सेवा के लिए चाहिए, पर वो करते करते उनका ज्ञान योग सब कुछ खत्म। सोचते हैं 6 साल धन कमाएंगे, बाद में बाबा की सेवा करेंगे। 6 साल तक बेचैनी के संस्कार, धन हो गया अब बेचैन है, क्योंकि संस्कार 6 साल के, उसका क्या? वो भी एक मृग मरीचिका जैसा है। इसके लिए उसके लिए पागलपन, बिजनेस बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, जो है वो ठीक है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करना है जिसमें ज्ञान योग ही नष्ट हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें 12 घंटा ड्यूटी है और 4 घंटा ट्रैवलिंग है। क्या हो रहा है? न अमृत वेला हो रहा है, न मुरली हो रही है, न नुमा शाम का योग हो रहा है। जॉब जॉब जॉब, सर्विस सर्विस सर्विस, सब कुछ खत्म। और यही चल रहा है कितने सालों से। कम करना है ये सब चीजें। उसके बाद है नाम और शान। ये भी एक मृग मरीचिका है कि हमारा नाम हो जाए, अलौकिक परिवार में नाम हो जाए, ये भी बंधन है। और यदि है उससे भी डिटैच, किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भी बंधन है। नहीं तो अगर उसमें खुशी है तो वो जब नहीं रहेगा तो दुख होगा। इसलिए ना ये इस यात्रा में साथ साथ चलने वाली चीज है, आएगी और जाएगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम भगवान के पीछे, बस ये सिंपल सा सूत्र है। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, हम उसके पीछे, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है। उसके बाद में एक भ्रम है, समय का भ्रम, टाइम। समय मिला तो करूंगा, ये भ्रम है, कभी नहीं मिलेगा। आगे समय मिलेगा तो देखूंगा, अगली बार देखता हूं, गेगे की भाषा, ड्रामा, ड्रामा का भ्रम। ये सारे भ्रम है, मृगमरीचिका है। ड्रामा ही मृगमरीचिका बन जाती है, समय मृगमरीचिका बन जाएगा। जीवन के भ्रम, जीवन के भी बहुत सारे कैटेगरीज है भ्रम के। ऐसा होगा तो करूंगा, ये अगर बदल जाए तो मैं फिर ठीक करूंगा सब कुछ, मेरा पति अगर ज्ञान में आ जाए ना फिर देखना बहुत अच्छा, मैं ज्ञान में चलूंगी। कभी नहीं आएगा। अगर ये सोच के चल रहे हैं तो, कि इसके आने के बाद मैं सब कुछ ठीक करूंगा। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था उस समय कि मेरी युगल, एक व्यक्ति ने पूछा था कि मेरी युगल ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं? मैं उसके लिए वेट करूं कि वो कन्विंस हो जाए, उसको समझ में आ जाए ब्रह्मचर्य की महिमा, और फिर हम दोनों साथ साथ चले तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने कहा था उनके लिए तुमको वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो गए। यहां किसी के लिए भी इंतजार नहीं करना होता है, अपनी राह पर चले जाओ, जिसको आना है वो आते रहेगा, आते रहेंगे। इसके लिए समय भी मृगमरीचिका हो जाता है, ये जीवन भी मृगमरीचिका हो जाता है, ड्रामा भी कभी कभी मृगमरीचिका बन जाता है। जो लग रहा है दूर से ठीक लग रहा है, पर वो भ्रम है एक। और भ्रम से मुक्ति का मार्ग, ये तो सारे भ्रम है, और एक है सुख सुविधाएं संसार की। हमारे घर में सब कुछ सुख सुविधाएं हो तब हम योग करेंगे। एसी चाहिए तो अच्छा योग लगता है, एसी नहीं है तो योगी नहीं लगता है। ऐसे बैठने के लिए अच्छा चाहिए तो अच्छा योग लगता है। जमीन पे बिठा हो शतरंजी पे तो बिल्कुल बाबा से पता नहीं क्या हो जाता है, दूरी दूरी लगती है। अच्छा सब कुछ, सीट अगर गए बाबा के कमरे में खाली नहीं, हमारे लिए हमारी डेली की सीट किसी ने ले ली, वो भी तो बंधन है। संडे की मुरली, अधीन और अधिकारी। अधीन नहीं बनना है, अधिकारी बनना है तुमको। कोई भी अधीनता ना हो, न स्थान की, न व्यक्ति की, न वस्तु की, न वैभव की। आज सब कुछ है, कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। दो राजाओं में अंतर यही है, एक राजा सब वैभव है, दूसरों के पास भी वैभव है, परंतु दूसरा नष्ट मोह है। पहले का सब कुछ छिन जाता है दुखी होता है, दूसरे का सब कुछ छिन जाता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऋषि का स्वभाव है। आज सब है इसका मतलब लोभ भरता, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे ही नहीं रखना, रादर ऐसा है कि जो गरीब होता है उसको तो ज्यादा मोह होता है, उल्टा देखा गया है। आंतरिक वृत्ति क्या है, निर्लोभ की वृत्ति है। आज सब कुछ साथ में, सारा सब पैसा है, हजारों हाथों में आ रहे, लाखों करोड़ों जा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, इतनी अंदर से डिटैचमेंट है। सो भ्रम से मुक्ति के मार्ग क्या क्या है? एक तो जागना है, अभी सो रहे हैं, क्या करना है? जागरण, अभी सो रहे हैं, पहले तो ये मान लो कि मैं सो रहा हूं, अब मुझे उठना है, बहुत नींद कर ली, विस्मृति की, अज्ञान की, आलस की, अलबेलेपन की, जागरण। योग को बढ़ाना है, मेडिटेशन, साक्षी भाव, साक्षी भाव को लाना है, ये जो मैं फंसा हूं और जिनको मैं कह रहा हूं ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे वो, ये मेरे वो, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, सब भ्रम है। एक रीति से कोई मर गया, अभी तक 10 साल हो गए मर के, अभी तक उसकी याद नहीं भूली, जब भी उसका जिक्र आता है आंसू आते हैं, तो कौन सा पाठ पक्का किया? आत्मा का। रोना धोना चालू है अब तक भी, अब तक एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जो जाना था वो चला गया, अब किस किस के पिछाड़ी रोगे? भ्रम। तो जागरण, मेडिटेशन, साक्षी भाव, और एक दूसरा जो शास्त्रों में आता है, नेति नेति, ये हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इसका। नेति 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 अर्थात ये भी सत्य नहीं है, 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 फिर सत्य है कि आपने आपसे बात करनी है। और वैराग, भ्रम से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? वैराग। एक तंत्र साधना है, हमने कभी पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, करते हैं वो तंत्र साधना में, एक तंत्र साधना होती है शव साधना, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। ये एक बहुत अजीब से प्रयोग जो लोगों ने किए हैं, हम ये नहीं कह रहे ऐसा करो, पर हम कर सकते हैं मानसिक, अपने ही डेड बॉडी के ऊपर बैठ के साधना करना, मैं ही मर चुका हूं, आप मुए मर गई दुनिया, या फिर जिनसे बहुत आसक्ति है उनके ऊपर ही बैठ जाओ और वो डेड बॉडी है नीचे। एक होती है शमशान साधना, शमशान में बैठ के साधना करते हैं लोग, क्यों? वैराग लाने के लिए। तो ये भी साधना की जा सकती है कि मेरे सारे इसको अपने तक सीमित रखना, मानसिक, बताना नहीं, नहीं तो दुखी हो जाएंगे घर परिवार वाले, जिनका बहुत मोह है और हमको ये पता चल गया कि मुझे इस मोह को जीतना है, तब ये साधना की जाए। जब मुझे पता है ये मोह बाधा है मेरे योग में, मेरे ज्ञान में, मेरे तपस्या में, मधुबन में आए हैं घर पे 10 फोन करना चालू है, अभी कैसा है, अभी कैसा है, उसने ये खाया कि नहीं खाया, ड्यूटी से आई कि नहीं आई, इधर आए तपस्या करने 3 दिन और फोन कॉल कंटिन्यूस चालू है, ये कोई वैराग है? ये मोह है। ऐसा शमशान घाट जिसमें मेरे सारे परिवार वाले गड़े हुए हैं और वहां बैठ के तपस्या करनी है। अच्छा योग लगेगा, फिर सब चले गए, पधार गए, अब मैं अकेला बैठा हूं, पति गया, पत्नी गई, बच्चे गए, मैं अकेला अभी जाने की तैयारी में हूं और उसके वहां बैठ के मैं तपस्या कर रहा हूं। वैराग, ये भी एक है शव साधना, शमशान साधना, और एक होती है 5 मुंड साधना, वो 5 खोपड़ियां लेती है उसके ऊपर बैठ के साधना करते हैं। तो वैराग चाहिए इस भ्रमजाल से, इस मृगमरीचिका से, इस मिराज से, इस ऑप्टिकल इल्यूजन से, इस दृष्टि भ्रम से मुक्त होने के लिए। तो ऐसे नष्टो मोह बन जाना है। ओम शांति।
तृष्णा है ये जग सारा, कोई न तेरा कोई न मेरा, तृष्णा है ये जग सारा, कोई न तेरा कोई न मेरा, कभी ना किसकी बुझ। जीवन की अमृत धारा, कोई न तेरा कोई न मेरा, मृग तृष्णा है ये जग सारा, कोई न तेरा कोई न मेरा।
कृष्णा है ये जग सारा।